लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि हम बुरे और भले को पहचानने का विवेक सीखें, जीवन पथ को चुनना सीखें तथा उन सभी चीजों को अस्वीकार करें जो हमें यीशु मसीह और उनके सुसमाचार से दूर ले जाती हैं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, हम अपने कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत पवित्र हृदय पर संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र दिल एक्सित नोस अर्थात उसने हमें प्रेम किया है की चर्चा सुन रहे हैं। श्रोताओं, हमने दिल एक्सित नोस के पांचवें अध्याय की शुरुआत की है जिसका शीर्षक है प्रेम के बदले प्रेम। श्रोताओं, हमने अपने विगत प्रसारण के अंतिम भाग में कहा कि फ्रांसिस डी सेल्स विशेष रूप से यीशु ख्रिस्त के शब्दों से प्रभावित थे, मुझसे सीखो, मैं हृदय से नम्र और विनीत हूँ। यहाँ तक कि सबसे साधारण चीजों और बातों में वे कहते हैं हम ईश्वर के हृदय को चुरा सकते हैं। वे जो उसकी सेवा करेंगे उन्हें न केवल बड़ी और महत्वपूर्ण मामलों को ध्यान देना चाहिए बल्कि छोटी और तुच्छ चीजों को भी, क्योंकि दोनों चीजों के द्वारा हम हृदय और प्रेम को जीते हैं। हमारा प्रेम अपने पड़ोसी को प्रेम करने में प्रकट होता है। एक प्रेम जो अपने में सुदृढ़, निरंतर, अचल, छोटी चीजों या लोगों के जीवन की स्थिति से निश्चित रहता है, यह परिवर्तन या दुश्मनी के अधीन नहीं होता। हमारे ईश्वर हमें बे इंतहा प्रेम करते हैं, हमारे कई दोषों और हमारे दोषों को सहन करते हैं। इस वजह से हमें चाहिए कि हम भी अपने भाइयों और बहनों के साथ ऐसा ही करें, हम उन्हें सहन करने हेतु कभी ना थकें। श्रोताओं, संत चार्ल्स डी फौकॉल्ट ने एक बालक के रूप में रहने और कार्य करते हुए यीशु का अनुसरण करने की चाह रखी, निरंतर उन चीजों का प्रयास करते हुए जिसे यीशु उनके स्थान में किए होते। केवल यीशु ख्रिस्त के हृदय की मनोभावनाओं से सुनिश्चित होते हुए वे इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ भी हम केवल प्रेम के बदले प्रेम की विषय वस्तु को पाते हैं। उनके शब्दों में मैं दुखों की चाह रखता हूँ जिससे मैं प्रेम से प्रेम वापस कर सकूं, उनका अनुसरण कर सकूं, उनके कार्य में प्रवेश कर सकूं, अपने को उनके संग दे सकूं। मैं अपने में एक बलिदान स्वरूप, एक चढ़ावे की भेंट, लोगों के पवित्र करण स्वरूप में कुछ नहीं हूँ। यीशु के प्रेम को दूसरों तक लाने की चाह अति दरिद्र लोगों और हमारी दुनिया में सबसे ज्यादा भुलाए गए के लिए उनका प्रेरितिक कार्य यीशु के शब्दों यीशु कारितास को अपने प्रतीक स्वरूप लिया, जो यीशु के हृदय की निशानी को एक क्रूस से ढकता है। न ही यह अपने में एक साधारण निर्णय था, मैं अपनी सारी शक्ति से उन गरीब खोए भाइयों को यह दिखाने और साक्ष्य देने की कोशिश की कि हमारा धर्म सर्व प्रेम सर्व भ्रातृत्व है और इसका प्रतीक एक हृदय है। उन्होंने यीशु के हृदय के नाम में अपने दूसरे भाइयों के संग मोराको में बसना चाहा। इस भांति सुसमाचार प्रचार की उनकी प्रेरिताई बाहर की ओर इस बात को प्रसारित करती है, करुणा को हमारे भ्रातृत्व से प्रसारित होना चाहिए जैसे कि यह यीशु के हृदय से फैलता है। इस चाह ने उसे एक विश्व बंधु बना दिया। उन्होंने अपने को यीशु के हृदय से निर्मित होने दिया। वह अपने भ्रातृत्वमय हृदय में मानवता के सारे दुख तकलीफों को वहन करना चाहते थे। हमारे हृदय को यीशु के हृदय की तरह चाहिए कि हम सारे नर और नारियों का आलिंगन करें। नर और नारियों के लिए यीशु के हृदय का प्रेम, वह प्रेम जो हमारे लिए उनके दुख भोग में व्यक्त होता है, वह प्रेम है जो हमारे लिए उनके दुख भोग में व्यक्त होता है। हमारे सारे लोगों के लिए वैसे ही प्रेम की आवश्यकता है। श्रोताओं, पुरोहित हेनरी हुवेलिन संत चार्ल्स डी फौकॉल्ट के आध्यात्मिक संचालक ने इस बात पर गौर किया, जब हमारे ईश्वर किसी एक हृदय में निवास करते हैं तो वे हमें वे अनुभूतियां प्रदान करते हैं। यह हृदय हमारे उन भाई बहनों तक पहुंचता है जो सबसे निचले स्तर के हैं। संत विंसेंट डी पॉल का हृदय ऐसा ही था। जब ईश्वर एक पुरोहित के हृदय में निवास करते हैं तो वे उसे गरीबों के यहाँ जाने को प्रेरित करते हैं। हमें इस बात का अनुभव करना महत्वपूर्ण है। संत विंसेंट के प्रेरितिक उत्साह का जिक्र करते हुए पुरोहित हुवेलिन कहते हैं कि वे ख्रिस्त के हृदय की भक्ति से पोषित थे। संत विंसेंट ने अपने साथियों से आग्रह किया कि वे हमारे प्रभु के हृदय में गरीब बीमार व्यक्तियों के लिए सांत्वना के शब्द खोजें। यदि वह शब्द हमारे लिए विश्वास प्रद है तो हमारा हृदय सबसे पहले यीशु ख्रिस्त के हृदय के प्रेम और कोमलता से परिवर्तित होता है। संत विंसेंट ने सदैव अपने प्रवचनों और सलाहों में इस विश्वास प्रद बात पर बल दिया और यह धर्म समाज के संविधान की विशेषताओं में एक महत्वपूर्ण बात बन गई है। हमें इस बात को सीखने में एक बड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है, जिसकी शिक्षा ख्रिस्त भी हमारे लिए प्रस्तुत करते हैं। मुझसे सीखो क्योंकि मैं हृदय से नम्र और विनीत हूँ। हमें इस बात को याद करना चाहिए कि उन्होंने स्वयं कहा कि नम्रता से हम पृथ्वी के अधिकारी बनते हैं। यदि हम इस पर कार्य करते हैं तो हम लोगों को जीत लेंगे और वे ईश्वर की ओर अभिमुख होंगे। लोगों के संग कठोरता या तीक्ष्णता में व्यवहार करने से यह नहीं होगा। श्रोताओं, वे बातें जो अब तक कही गई हैं हमें इस बात को समझने में मदद करती हैं कि ईश्वरीय वचनों के प्रकाश में क्षतिपूर्ति का सही अर्थ हमारे लिए ईश्वर की चाह को व्यक्त करना है, जहां उनकी कृपा को हम अपने लिए पाते हैं। इस सवाल पर बहुत सारे विचार मंथन हुए हैं, लेकिन संत पापा योहान पॉलस द्वितीय ने हमें एक स्पष्ट जवाब दिया है, जो ख्रिस्तियों को सुसमाचार के अनुरूप सुधार की भावना की ओर मार्गदर्शन कर सकता है। संत पापा संत योहान पॉल कहते हैं कि एक साथ अपने को ख्रिस्त के हृदय के लिए समर्पित करते हुए घृणा और हिंसा से संचित खंडहरों पर प्रेम की अत्यंत वांछित सभ्यता मसीह के हृदय का राज्य निर्मित किया जा सकता है। यह स्पष्ट रूप से हमारे लिए इस बात की मांग करती है कि हम संतानों के रूप में ईश्वर के प्रेम और पड़ोसी प्रेम में संयुक्त रहें, और वास्तव में यही वह सच्ची क्षतिपूर्ति है जिसकी मांग मुक्तिदाता का हृदय हमसे करता है। ख्रिस्त के संग एकता दुनिया के खंडहर में, जिसे हमने अपने पापों के कारण छोड़ा है, हम एक नई प्रेम की सभ्यता के निर्माण करने हेतु बुलाए गए हैं। यही तो मसीह के हृदय की इच्छा के अनुसार क्षतिपूर्ति करने का अर्थ है। बुराई द्वारा मचाई गई तबाही के बीच मसीह का हृदय चाहता है कि हम अपने संसार में अच्छाई और सुंदरता बहाल करने में उनका साथ दें। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र दिलेक्सित नोस अर्थात उसने हमें प्रेम किया है की चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।
तू है दया का सागर पिता, भर दे मुझ में प्यार तेरा।
वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो 14वें ने कस्तिल गंदोल्फो में कराबिनियरी के मुख्यालय में ख्रिस्त त्याग अर्पित करते हुए जयंती वर्ष के दौरान रोम आने वाले तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए इतालवी सुरक्षा बल के प्रयासों के लिए अपना आभार व्यक्त किया। 15 जुलाई को रोम के कस्तिल गंदोल्फो में अपनी ग्रीष्मकालीन छुट्टी के दौरान पोप लियो ने रोम के निकट पहाड़ी शहर में स्थित कराबिनियरी मुख्यालय के प्रार्थनालय में ख्रिस्त त्याग अर्पित किया। कराबिनियरी का मुख्यालय विला दे जेस्विती अर्थात जेस्विट्स हाउस में स्थित है, जिसका स्वामित्व वैटिकन के पास है और इससे कराबिनियरी जेस्विट्स एवं स्थानीय निवासियों को पट्टे पर दिया गया है। कराबिनियरी इटली की राष्ट्रीय सुरक्षा बल है जो एक प्रकार की सैन्य पुलिस है। कस्तिल गंदोल्फो के इस ख्रिस्त त्याग समारोह में इटली के सुरक्षा मंत्री ग्विदो क्रोसेत्तो और कराबिनियरी के जनरल कमांडर सल्वातोरे लुंगो तथा इटली के सैन्य सेवा की प्रेरिताई के लिए नियुक्त महाधर्मदोष जान फ्रांको साबा ने ख्रिस्त त्याग में भाग लिया। अपने प्रवचन में पोप लियो ने ख्रिस्त अभिवादन भाई और बहन पर ध्यान केंद्रित किया, जो उनके अनुसार रिश्तों का प्रतीक है और जिससे धर्म विधि में निकटता एवं स्नेह के प्रतीक के रूप में दोहराया जाता है। उन्होंने कहा, हम सभी सचमुच यीशु के भाई बहन हैं। जब हम ईश्वर की इच्छा पूरी करते हैं अर्थात जब हम एक दूसरे से वैसा ही प्रेम करते हैं जैसा ईश्वर ने हमसे किया है। पोप ने आगे कहा कि प्रत्येक रिश्ता यीशु में एक उपहार बन जाता है, क्योंकि जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो वह पवित्र आत्मा को हमारे हृदय में निवास करने के लिए भेजते हैं। ईश्वर का प्रेम इतना महान है, उन्होंने कहा कि यीशु ने अपनी माँ को भी अपने लिए नहीं रखा बल्कि क्रूस पर से मरियम को हमारी माँ के रूप में सौंप दिया। पोप ने कहा कि मरियम को पहले शिष्य इसलिए माना जाता है क्योंकि उन्होंने सबसे पहले प्रेम एवं निष्ठा के साथ ईश्वर के वचन को अपने हृदय में स्वीकार किया था। उन्होंने स्मरण दिलाया कि कराबिनियरी ने हाल ही में निष्ठावान कुंवारी मरियम विर्गो फिदेलिस को कराबिनियरी की संरक्षिका घोषित किए जाने की 75वीं वर्षगांठ मनाई। पोप ने कहा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कराबिनियरी ने माता मरियम की निष्ठा को इतालवी लोगों और राष्ट्र के प्रति प्रत्येक अधिकारी की निष्ठा के आदर्श के रूप में देखा। इसके बाद पोप ने इतालवी लोगों के प्रति उनकी महान एवं अथक सेवा तथा रोम आने वाले लाखों तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए कराबिनियरी के प्रति आभार व्यक्त किया। फिलिस्तीन के ख्रिस्तीय गांव पर कई सप्ताह तक चले हमलों के बाद पौत्र भूमि के संरक्षक फादर इब्राहिम फलतास ने शांति के लिए भावुक अपील की है। अरबी में तायबेह का अर्थ है अच्छा, लेकिन फिलिस्तीनी गांव में जिसके सभी निवासी ख्रिस्ते हैं फिलहाल कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। 14 जुलाई को पौत्र भूमि की ख्रिस्ते कलिसियाओं के प्रमुख राजदूतों एवं वाणिज्य दूतों के साथ तायबेह के निवासियों और पुरोहितों के प्रति अपनी निकटता एवं एकजुटता व्यक्त करने आए, जो हफ्तों से सैकड़ों इसराइली निवासियों के भीषण हमलों का सामना कर रहे हैं। वे निवासी उनके घरों और जमीनों पर कब्जा करने की हिंसक कोशिश कर रहे हैं। तायबेह में लगभग 1,500 निवासी हैं, जो लैटिन, ग्रीक, ऑर्थोडॉक्स और मेलकाइट के अलग अलग ख्रिस्ती समुदायों से जुड़े हैं। एक साथ उपस्थित होकर उन लोगों के भाईचारेपूर्ण समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया, जो उनकी पीड़ा को सचमुच समझते हैं। फादर फलतास ने लिखा, जैसे ही आप यरूशलेम के उत्तर से तायबेह पहुंचते हैं, गांव एक जाना पहचाना और स्वागत करने वाला दृश्य प्रस्तुत करता है। 3 गिरजाघरों के घंटाघर ऊपर उठे हुए हैं, एक शांतिपूर्ण एवं एकजुट समुदाय पर नजर रखते हैं और लोगों की आवाजों से वयस्कों, बुजुर्गों और बच्चों की आप उनके डर, उनके दर्द और पिछले हफ्तों के तनाव को सुन सकते हैं। इस क्षेत्र में कई लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हैं, कई अपने घरों से भागने के लिए मजबूर हैं, इमारत ध्वस्त हो चुके हैं, खेत में आग लगा दिए गए हैं। ये निहत्थे नागरिकों के खिलाफ कायरतापूर्ण हमले हैं, जो सैकड़ों वर्षों से अपने पूर्वजों के धर्म के प्रति वफादार रहे उस देश में जहां अभी भी यीशु के समय की परंपराएं मौजूद हैं, फिर भी घृणा एवं बदला का एक शब्द भी उच्चारण नहीं किया, सिर्फ मदद के लिए हार्दिक अपील की ताकि वे अपनी मातृभूमि में शांति से जी सकें। वैटिकन विदेश सचिव महादमदश पॉल रिचर्ड गलागर ने भारत की अपनी सत्ता पर की यात्रा के दौरान मंगलवार को 72वें महादमदश मार इवानोस समारोह के लिए आयोजित क्रिस्त्याग में विश्वासों को याद दिलाया कि पूजनीय महादमदश आज भी विश्वासों से पौत्रता का अनुसरण करने और मसीह में गहराई से जुड़े रहने का आह्वान करते हैं। महादमदश गलागर ने कहा, पूजनीय महादमदश मार इवानोस ने अपने भाइयों को मसीह के साथ व्यक्तिगत संबंध विकसित करने, दैनिक जीवन में पौत्रता की खोज करने और निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने के लिए प्रोत्साहित किया। अपने प्रवचन में महादमदश गलागर ने कहा कि वे अत्यंत कृतज्ञता के साथ उनके समक्ष खड़े हैं तथा उन्होंने वहां उपस्थित प्रत्येक को पोप लियो का अभिवादन और प्रेरितिक आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, पोप ने मुझे आपको हार्दिक शुभकामनाएं देने के लिए कहा है। त्रिवेंद्रम में श्रद्धालुओं के इस पौत्र सभा में स्वागत किया जाना सचमुच सम्मान की बात है। एक ऐसा स्थान जो प्रेरित संत थॉमस के समय से ही विश्वास के उत्साह को गौरव से सुरक्षित रखा है तथा आदरणीय महादमदश मार इवानियोस के पर्व पर इस पौत्र कुर्बानों का पर्व मनाना एक ऐसे व्यक्ति जिनका जीवन और मिशन आज भी हमें प्रेरित करता है। महादमदश ने याद दिलाया कि शिक्षा के प्रति मार इवानियोस की प्रतिबद्धता उनकी प्रेरिताई के स्तंभ थी। उन्होंने कहा, एकता के इस दूत ने यह समझा कि शिक्षा परिवर्तनकारी होनी चाहिए, न केवल बौद्धिक रूप से बल्कि सबसे बढ़कर नैतिक और आध्यात्मिक रूप से और समग्र होनी चाहिए। मन, शरीर, हृदय और आत्मा संपूर्ण व्यक्ति का पोषण करना चाहिए। अंत में उन्होंने प्रार्थना की कि भले चरवाहे प्रभु हमें वफादार शिष्य, साहसी नेता और दयालु सेवक बनने की कृपा प्रदान करें ताकि हम एक ऐसी कलीसिया एवं एक ऐसे विश्व का निर्माण कर सकें जहां एकता, शांति और प्रेम का राज हो। इंडोनेशिया में माता मरियम का उत्सव ख्रिस्तियों एवं मुसलमानों को एक साथ लाता है। फ्लोरेंस द्वीप पर धन्या कुमारी मरियम के स्वर्गोद्ग्रहण महापर्व के पूर्व 26 पल्लियों के विश्वासी 5 सप्ताह तक जुलूस एवं प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। नाइजीरिया के एडो राज्य में निष्कलंक गर्भागमन माइनर सेमिनरी पर हथियार हमले में एक सुरक्षाकर्मी की हत्या कर दी गई तथा 3 सेमिनरी छात्रों का अपहरण कर लिया गया है। 10 जुलाई को नाइजीरिया के एडो राज्य के एवी आनोक पोडी के एक सेमिनरी पर हथियारों सहित हमले में 3 सेमिनरी छात्रों का अपहरण कर लिया गया और एक सुरक्षाकर्मी की हत्या कर दी गई, जैसा कि 12 जुलाई को फिदे समाचार एजेंसी ने रिपोर्ट किया है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।